इडियट लोगों को मैं देखता हूँ वो हीरो बन जाते हैं, जिन्होंने कुछ कोई कॉन्ट्रोवर्शियल बोल देंगे, कुछ किसी की गाली गलौज कर देंगे, वो लोग हीरो बन रहे हैं। तो क्यों ना हम जैसे लोग कुछ करें और समाज को एक आईना दिखाएं कि आप भी सक्सेसफुल बन सकते हो। क्योंकि हर आदमी, रणवीर भाई मैं आपको बता दूं, अपनी पहचान बनाने के लिए दौड़ रहा है। टाइम लगेगा, पर हर आदमी कोशिश करता है कि वो अपना पहला ट्रिप फ्लाइट पकड़े, पहला विदेश ट्रिप ले, अपनी ब्रांडेड कपड़े पहने, 2-4 हज़ार के जो भी ब्रांडेड कंपनी के जूते हैं वो खरीदे। वो खुद के अंदर, उसके अंदर है कहीं ना कहीं छुपा हुआ कि मेरे को भी करना है।
मैंने दुनिया बहुत देखी है करियर स्टार्ट होने के बाद भी, और मैंने ये नोटिस किया कि भारत में हम सम्मान को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं,
बहुत ज्यादा।
और ये ऑनेस्टली गलती
है, पाप है हमारा,
पाप है।
दिस इज द लाइक, यही गलत है।
क्यों क्यों खोज रहे हम सम्मान?
हर आदमी ऐसे ही सिर झुका के कि मेरे को सम्मान दो। Everybody wants to be feel important.
प्रफुल बिल्लोरे, MBA चाय वाला के बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, बट ये उनका पहला पॉडकास्ट है। हमने क्या बात करी, हमने किस तरह की मोटिवेशन फैलाई, आप खुद देखोगे इस एपिसोड में। देखिए MBA चाय वाला, AKA प्रफुल बिल्लोरे ऑन TRS हिंदी।
प्रफुल बिल्लोरे MBA चाय वाला TRS हिंदी में आपका स्वागत है भाई।
मेरे हाथ लंबे, कानून के हाथ लंबे। रणवीर भाई
कैसे हो?
मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे हो?
बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। अभी ऐसा लग रहा है कि वो एक चैनल खुल गया आपसे बात करने के लिए।
अब मजा आएगा ना,
क्योंकि हर पॉडकास्ट से पहले मैं या तो बहुत ज्यादा बात करता हूँ अपने गेस्ट के साथ, और कोई कोई गेस्ट के साथ बिल्कुल बात
नहीं करता हूँ,
ताकि पॉडकास्ट स्टार्ट होने के बाद हम असली बात करें।
क्या बात है, तो मूवी बन जाएगी 2-3 घंटे की, आपसे बातें करने लगेंगे तो।
कुछ सीक्रेट बताइए खुद के बारे में।
मेरे कुछ सीक्रेट ही नहीं, मेरी तो हर चीज पता है लोगों को। मैंने हर चीज तो वीडियोस में बोल दी कि चाय कैसे बनने से लेके कहाँ कैसे पहुंचे, कहाँ से आते थे। लगभग मैं एक ऐसा बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर हूँ जिसने जो आज किया वो कल वीडियो में डाल दिया। तो मेरी तो आई एम एन ओपन बुक, ऐसा बोलते हैं ना, अब खुली किताब हूँ मैं, सबको लगभग सब पता है, और कोई सीक्रेट ही नहीं है। तो जहाँ सीक्रेट नहीं होते वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सीक्रेट होता है।
आपका बर्थ ईयर क्या है?
96।
ओके, आप लास्ट ऑफ द मिलेनियल्स हो।
लास्ट ऑफ द मिलेनियल्स, हाँ, वो आखिरी पुश्त नहीं बोलते, आखिरी घान।
हाँ
ऐसा बोलते हैं जब आप समोसा कचौड़ी कहीं तलते हो तो आखिरी बोले खत्म हो गया माल, तो वो घान हूं मैं कि चल अब इसके बाद कोई गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी।
यहाँ आप एक कस्प हो, मिलेनियल और जेनजी के कस्प हो, जैसे कहते हैं आई एम अ जेमिनी कैंसर कस्प।
हाँ वो बीच वाला,
हाँ,
जिसने ये भी देखा है वो भी देखा है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, इसका फायदे भी बहुत है।
जितना मैं जेनजी के बारे में समझता हूँ, ऐसा सुनने में आया कि 60% ऑफ जेनजी पीपल इन इंडिया या आई थिंक इन द वर्ल्ड आर कॉन्टेंट क्रिएटर्स। मतलब हर किसी ने कॉन्टेंट एटलीस्ट ट्राई किया है,
कोशिश हाथ मारा है।
हाँ,
आगे कंटिन्यू नहीं किया ये अलग बात है, पर उन्होंने हाथ तो मारा है।
पर 60% बहुत बड़ा नंबर होता है,
बहुत बड़ा नंबर। आखिरी में बचते 4-5-6% ही है ना,
शायद उससे भी कम,
बहुत कम। यस, आप जैसे लोग और हमारे जैसे छोटे मोटे लोग जो भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चालू करना इज ईजी, पर करते रहना और लगातार उसी स्पीड से करते रहना, इस डेडिकेशन को हर कोई कर ले तो बहुत मुश्किल काम है।
तो आपने एक बिजनेस को ग्रो किया, फिर बिजनेस को ग्रो करने के बाद आपने कंटेंट की शुरुआत की, और कंटेंट के ब्रांड को भी ग्रो किया, कंटेंट के थ्रू अपने ब्रांड को ग्रो किया।
करेक्ट। तो बिजनेस के पहले कहीं ना कहीं मैं कंटेंट थोड़ा बहुत क्रिएट करता था, कोरा पे लिखता था, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे ट्वीट डालता था।
क्यों?
क्योंकि मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश का एक जिला है धार, इंदौर से 60 किलोमीटर दूर, वहां पे गाँव है लबरौदा, वहां मैं पैदा हुआ और वहीं पला बड़ा मैं। 20 साल की उम्र तक लगभग वहीं था, मेरा ग्रेजुएशन भी उसी धार जिले में और सरकारी कॉलेज में। तो वहां पे जो सर्कल मुझे चाहिए था, जो मुझे ग्रो करा था, तो इंटरनेट के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था।
और मतलब उसके आसपास के लोग
वो थे, वो अपने लेवल पे उस क्षेत्र के हिसाब से बहुत अच्छा कर रहे थे, पर आपको एक ग्रो करना, लीप ऑफ फेथ करके आप कैसे बाहर करोगे? तो अगर आप देखो कि आज इंटरनेट की वजह से मैं बाहरी लोगों से कनेक्ट हो पाया, आप समझो 5-6-7 साल पहले जब मैं इंटरनेट चलाता था मेरे गांव में, तो वहां पे आसपास उस जिले के लोग वहां पे यूट्यूब देखते थे, वीडियोस देखते थे, मूवीज देखते थे, तो मैं मूवीज नहीं देखता था। मैं उस टाइम पे लिंक्डइन पे, फेसबुक पे आईआईएम्स के, आईआईटीज के, हार्वर्ड के बच्चों को रिक्वेस्ट पहुंचाता था, तो फिर मैं उनको देखता था कि वो क्या करते थे। तो मुझे लगता है कि जैसे रणवीर को मैंने रिक्वेस्ट पहुंचाई अगर उस टाइम पे, तो रणवीर पॉडकास्ट कर रहा है, रणवीर इनको इनवाइट कर रहा है, रणवीर वहां घूम रहा है, तो मैं क्यों नहीं घूम सकता, वो ऐसा क्या करते हैं। तो उस टाइम पे मैं हजारों रिक्वेस्ट पहुंचाता था, तो उसी टाइम से मैं इंटरनेट को समझ गया था कि दुनिया में अगर आपको किसी से भी कनेक्ट होना है तो इंटरनेट इज द बेस्ट थिंग।
फिर आइडिया आपके दिमाग में आया कैसे?
क्योंकि मैं क्यूरियस स्टूडेंट रहा हूँ, मैं क्यूरियस बच्चा रहा हूँ, स्टूडेंट भी नहीं, एक बच्चा क्यूरियस रहा हूँ। मैंने मेरे कई इंटरव्यू में मैंने बोला कि मेरी उम्र से 5 से 6 साल बड़े उम्रदराज लोगों के साथ मैं उठता बैठता था। तो पिनाकिन बारोट करके मेरे गुरु थे, टीचर, गुरु नहीं थे, टीचर थे, गुरु बाद में बने, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस मैंने उनसे लेता था। तो उन्होंने मेरा पहली बार लिंक्डइन अकाउंट बनाया था, तो उनका जो जन्म था वो अहमदाबाद में हुआ था, तो उन्होंने पहली बार मेरा अकाउंट बनाया।
और ये लाइफ में मेंटर का फायदा होता है,
बहुत फायदे होते हैं एक्चुअली। मेंटर ना भी बोलो अगर इस शब्द को, तो आप बोलो कि ऐसा कोई आदमी अपने ऊपर रखो जो आपको बोल दे कि क्या सही है और क्या गलत है, और अगर इतना ना बोले कि क्या सही है, ये बता दे कि गलत क्या है, तो आप भटकोगे नहीं। तो पिनाकिन सर ने बहुत हेल्प करी। तो इंटरनेट भी उन्होंने, मुझे आज भी याद है, लिंक्डइन का अकाउंट उन्होंने बनाया था मेरा, ट्विटर का अकाउंट उन्होंने बनाया था, मुझे तो अकाउंट बनाता भी नहीं आता था। दूसरा, आज शायद बहुत सी बार मैं भी अपना, आजकल मैं देख रहा हूँ मेरा बहुत ट्रोलिंग और रोस्टिंग हो रहा है, पिछले 5 सालों में मैं शायद कार खरीद चुका हूँ, मैं एक एसी में बैठ चुका हूँ, मेरी कंपनी में 50-100 लोग काम कर रहे हैं, बट 5 साल पहले जो मैंने संघर्ष किया तो लोगों को एक्सेप्टेबल भी नहीं लगता कि इसने चाय बेची होगी रोड पे। आज मैं आपको बताऊं तो, क्योंकि उनको ये कैसे हो सकता, ये ऐसा इसने कैसे किया होगा रोड पे, हमसे तो नहीं हो रहा। तो एक्सेप्ट करना इज नॉट इजी फॉर पीपल।
एक और चीज कहना चाहूंगा, जो भी आपने अब तक कहा इस पॉडकास्ट में, ये बेसिकली एक रूरल इंडिया का ऐसे है, रूरल इंडिया की रियलिटी है,
एक्चुअल में यही भारत है।
ओके
और करोड़ों युवा, आप बोलते हो ना कि आपके कितने लोग सब्सक्राइबर है रणवीर, मैं आपको बताता हूँ, आपकी कॉमेंट्स में पढ़ता हूँ, आपके सारे पॉडकास्ट देखता हूँ, और कहीं ना कहीं कोई पहला यूट्यूबर जिसको मैंने देखा है आप हो उसमें से एक या दो, मतलब रणवीर शो में देखता था, आज से नहीं, बहुत सालों से देखता हूँ, जब तो हमारी दोस्ती मित्रता भी नहीं थी, तो तब मैंने देखता था कि रणवीर भाई हम जैसे लोगों का तो भगवान है, हमें कोई आके ज्ञान देगा क्या। हमें लबरौदा मेरा जो गांव है, या उड़ीसा का कोई गांव है, झारखंड का कोई गांव, वहां के आप बताओगे क्या कि आप खाओ कैसे, पियो कैसे, आप आपकी बॉडी कैसे चेंज कर सकते। ये इंटरनेट के माध्यम से हम लोगों तक भी वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ 200-150 रुपए के रिचार्ज में मिल रही है ना। आप लोगों का भला, और आपको क्या है कि आपको एक ऑडियंस मिलने का एक, आपको क्या प्लस होगा कि ऑडियंस मिल रही है, पर आपको ये नहीं पता कि आपको व्यूअरशिप सब्सक्राइबर से ज्यादा उस बंदे को आप जो भरोसा दे रहे हो, उस बंदे को जो आप लेसन दे रहे हो, उस बंदे को जो आप एक दिशा दिखा रहे हो, उस बंदे का जो डर खत्म कर रहे हो, एक्चुअली में सबसे बड़ा पुण्य का आप काम कर रहे हो, देशभक्ति है, आप समझ रहे हो, ये सैक्रिफाइस आप दे रहे हो।
मैं एक सीक्रेट शेयर करता हूँ। बचपन में मैं फुटबॉल अच्छे से नहीं खेलता था, ठीक है, पर मेरे क्लासमेट्स हमेशा जब हम फुटबॉल खेलने जाते थे, मेरे को एक कैप्टन बना के रखते थे, दो आई वॉज नॉट गुड, और जब भी मैं कैप्टन बनता था आई वुड पिक द वीकेस्ट प्लेयर फर्स्ट, क्योंकि उसे ये फीलिंग देनी थी कि तू यार इतना भी वीक नहीं है।
मैं इसको बोलता हूँ कि बड़ा आदमी वही है जो अपने साथ वालों को कभी छोटा महसूस ना होना दे,
शायद
यही है।
और इसी का कंटिन्यूएशन मैं यूट्यूब के थ्रू ट्राई कर रहा हूँ कि किसी को भी वो छोटी वाली फीलिंग फील नहीं होनी चाहिए, कि शायद मैंने भी वो छोटी वाली फीलिंग बहुत एक्सपीरियंस किया मेरे खुद के सर्कल्स।
एंड रणवीर, ये जो आपने बोला ना वीक आदमी को पकड़ता हूँ, मैं बोलता हूँ कितने ही लोगों में, देखो कहीं से भी हो, किसी भी गांव का हो, पढ़ा लिखा ना हो, बॉडी अच्छी नहीं हो, सुंदर नहीं देखता हूँ, उसके अंदर कोई एक ऐसा सुपर पावर होता है, कोई सुपर टैलेंट होता है,
गॉड गिफ्टेड
कुछ तो एक होता है। हो सकता है वो अकाउंटिंग अच्छी करता हो सकता है उसका कीबोर्ड पे स्पीड अच्छा हो सकता है वो देखता बहुत अच्छा हो तो निशाना लगा देगा, हो सकता है वो बॉल बहुत अच्छे से फेंक सकता हो। हर आदमी के अंदर एक क्वालिटी और एक ऐसा कोई सुपर पावर भगवान देता है। वही हनुमान जामवंत का आपको पता होगा ना, हनुमान जी को भी नहीं पता था कि उनमें इतनी ताकत है। जामवंत जी आए, रामायण का अगर किस्सा बताओ तो जामवंत ही बोलते हैं हनुमान जी को कि भाई तेरे में बहुत शक्ति, तू उड़ के जा सकता है, तू लंका जा सकता है, तू जड़ी बूटी वाला पूरा पहाड़ उठाकर ले सकता है। बोले हनुमान जी, अच्छा मेरे में इतनी ताकत है। तो आप जो है और मैं जैसे लोग जामवंत बनने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई तुझमें टैलेंट है। और एक बार रणवीर भाई आपके पॉडकास्ट हो गए, मेरी शायद थोड़ी बहुत इंस्पिरेशनल वीडियोज हो गई, और हजारों लाखों लोग जो रंकूर भाई है, बहुत सारे लोग पॉडकास्ट बनाए, वो परत अगर बाहर निकल गई, छोटा सा डर होता है, वो बोलते हैं ना कि सफलता मुश्किल नहीं, मुश्किल तो पहला कदम होता है, वो डर की परत आप और हमारे जैसे लोग हटा रहे।
आपको लगता है पॉडकास्ट की ग्रोथ होगी?
बिल्कुल होगी। इंडिया में पॉडकास्ट एक ऐसी चीज, देखो आप टीवी डिबेट्स पे जाओ तो क्या देखने को मिलता है आपको पता है, आप थिएटरों में जाओ तो आपको क्या मिलता है आपको भी पता है। ये 200 रुपए के रिचार्ज में इतना अच्छा कॉन्वर्सेशन आदमी को घर बैठे, गाँव में, वो चाहे खेत खलियान में बैठा हो, वो कहीं गैरेज में काम कर रहा हो, कोई बड़ी फैक्ट्री में अगर सिक्योरिटी का जॉब करता हो, उसको फ्री में मिलने आ रहा है। उसके अंदर भी तो सीख रहा है वो, उसके अंदर भी तो कहीं ना कहीं रात को 1-1.5 बजे, रात को 2 बजे वो सो के जागता होगा, यार कुछ करना है जिंदगी में, तो आपके और मेरे जैसे लोगों को सुन रहा होगा ना वो, और हम ही लोग हैं जो जामवंत बनने की कोशिश करेंगे, भाई तुझमें शक्ति है तो कुछ कर सकते हैं आप। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई तू धंधे के साथ साथ ये इतना वीडियोज क्यों बनाता है। लाखों लोगों ने रणवीर भाई MBA चावला के वीडियोस, मेरी पॉडकास्ट सुन के खुद का बिजनेस चालू किया, अपनी चलती हुई नौकरियां छोड़ी, जो उनको काम करना था, अपने माँ बाप से दूरी बना के कोई काम चालू करना था, मम्मी पापा से परेशान थे, कोई भी कारण हो, कोई ब्रेकअप करना था, कोई दोस्ती यारी तोड़नी थी, अच्छी दोस्ती यारी करनी थी, सर्कल चेंज करना था, जगह चेंज करनी थी, कोई धंधा चालू करना था, कोई दुकान चालू करनी थी, कोई पहली ट्रिप लेनी थी, कोई फ्लाइट पकड़नी थी, पहला कोई अच्छा आईफोन खरीदना थी, पहले कोई स्टारबक्स मैकडॉनल्ड्स का ऑर्डर लेना था, जो बहुत बड़ी बड़ी चीज इंडिया में उन्होंने किए भैया। कितनी सारी दीदियां लड़कियां जो अपने घरों में रहती है शादियों के बाद, अच्छी पढ़ी लिखने के बाद, एमबीए करने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद, उन्होंने अपना कोई व्यापार चालू किया, उनको डर खत्म हो गया कि ये बंदा अगर एमबीए ड्रॉप आउट करके ठेला डाल सकता है तो हम भी कुछ कर सकते हैं। तो इट्स नॉट अबाउट अस, कभी ना कभी आप भी रणवीर भाई, आप इतना बड़ा बिजनेस चला रहे हो, इतना बड़ा पॉडकास्ट, आपकी इतनी बड़ी व्यूअरशिप, पर आपके अंदर भी एक मन में रहता है कि यार मेरी जनता को क्या, मेरे देश का क्या कर सकता हूँ, डू आई, एम आई गिविंग बैक टू द सोसाइटी। और ये शायद आप ने ऑडियंस लाख लोग सुन रहे होंगे, हो सकता है 25-50 और लोग बहुत एडवांस हो, बहुत अच्छा समझदार हो, पर अगर 1,00,000 लोग देखने में अगर 10 लोगों ने भी या 100 लोगों ने भी अपना बिजनेस चालू कर दिया इस पॉडकास्ट के माध्यम से, तो क्या आपको लगता है कि वो 100 लोग जो अपना जिंदगी पलट रहे वो ज्यादा अच्छा है ना?
आपको क्या लगता है 10 सालों में रूरल इंडिया मतलब असली भारत में क्या हो रहा होगा 10 साल के बाद 2032 में?
देखो मैं बता दूँ, आज एमबीए चावला को लोग बोलते हैं कि बहुत फेमस हो गया इंटरनेट से, ये मेरा 10 साल लगा इसमें, मुझे 5 साल तो मैंने थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीखी, देश दुनिया घूमा थोड़ा बहुत, थोड़ा अपने सर्कल को छोड़ने की कोशिश करी, माँ बाप से लड़ाई करी, माँ बाप बोलते थे कि या मत जा या मत खा, समझ रहे हो, वो बहुत डर, मैंने बोला बहुत डर है, बहुत डर, वो डर में मैं था शुरू के 4 साल तक, तो वो प्लेटफॉर्म बिल्डअप करने में लग गया कि लोगों से बात क्या करूँगा, कॉन्फिडेंस कहाँ से लाऊंगा, तो उसमें लग गया, फिर 5 साल धंधा चालू करने में, तो एक्चुअल देखो तो एमबीए चालू को 10 साल लगे। आज जो बच्चा फर्स्ट या सेकंड में बॉम्बे में दिल्ली में जो चीज पढ़ता है इंटरनेट के अलावा की बात करूं, वो हमें देखने में करने में 25-25 साल की उम्र में लग गया। आज 150-200 साल के बच्चे, 3-3 साल के बच्चे फ्लाइट्स में बैठ जाते हैं, बड़े बड़े इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते, वो हमें सौभाग्य 22 साल में मिला, 20 साल में मिला, तो ये तो हमारी एज कम हो गई। रूरल इंडिया अगले 7-8 सालों में बहुत बढ़ेगा, बड़े बड़े डिसीजन, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट, बड़े बड़े काम, पॉडकास्ट, इंटरव्यूअर हो, बड़े बड़े किंग मेकर या खुद किंग गांव वाले लोग होंगे रूरल एरिया, उनमें बहुत टैलेंट है,
और वहीं बैठ के बनाएंगे,
वहां से भी बना सकते, वापस शहर में जाके बना सकते, शहर से वापस चले जाएंगे, ये एक पांव गांव में रहेगा एक पांव शहर में रहेगा, अपने माँ बाप को भी संभालेंगे, अपनी संस्कृति को भी संभालेंगे, अपने धर्म को भी संभालेंगे, अपने आसपास के रिश्तेदारों को भी संभालेंगे, उनको भी 4 चीज सिखाएंगे, उनको भी 1 कदम आगे लेके आएंगे, और ये लोग असली इंडिया के क्रिएटर होंगे, असली भारत के निर्माता होंगे।
मनीष भाई ने एक्चुअली ट्वीट किया था कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इन इंडिया इंग्लिश इज अ स्किल, आप ये मानते हो?
ये डर है एक्चुअली में इंग्लिश का,
मैं आपको इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे इस चीज पर पर्सपेक्टिव नहीं है, इंग्लिश मेरी थिंकिंग लैंग्वेज है, मतलब हिंदी से पहले मैंने
थिंक इन इंग्लिश,
हाँ, और हिंदी से पहले मैंने इंग्लिश सीखी थी मेरे सर्कमस्टांसेस,
हाँ इट्स ओके,
पर मैं आपके पर्सपेक्टिव को जानना चाहूंगा कि ये अंग्रेजी सीखने का एक्सपीरियंस कैसा रहा और सीखने के बाद आपको कुछ फायदे मिले उससे?
बहुत फायदे मिले, okay. देखो मेजरली रूरल एरियाज में अंग्रेजी में अगर आप बोल दोगे तो 98% लोग, 99% लोग घबरा जाएंगे कि ये बड़ा आदमी है, इसको बहुत कुछ आता है,
2022 में भी,
आज भी,
ओके,
ऑल्दो जिसने अपना अपार्ट फ्रॉम कुछ बड़ा उखाड़ के रखा है, अब तुमने नीरज चोपड़ा जैसा जेवलिन अगर फेंक दिया तो तुम्हारे को अंग्रेजी अब कोई नहीं पूछेगा अगर आपने कोई ओलंपिक कोई क्रिकेट में अच्छा कर लिया हो, आप समझ रहे हो, अगर आपने बिजनेस बहुत बड़ा खड़ा कर दिया तो फिर अंग्रेजी, चलो आपको कॉन्फिडेंस होगा कि मैं अंग्रेजी से नहीं इसको व्यापार में हरा दूंगा, इसको स्पोर्ट्स में हरा दूंगा, इसको बोलने में हरा दूंगा, हिंदी में मैं कवि हूं तो अंग्रेजी की क्या जरूरत। पर जिन लोगों ने कुछ किया नहीं जिंदगी में, उम्र में कम 18-19-20-25-22 के, जो किसान है, जो सरकारी नौकरी करते हैं, जिनको कभी अंग्रेजी से पाला नहीं पड़ा, तो वो लोग अंग्रेजी लोगों से घबरा जाते हैं।
जो अंग्रेजी समझ आती है लोगों को?
कम आती है, नहीं आती, मैं बता दूं मेरे गांव में मुझे नहीं पता कितने लोगों को अंग्रेजी समझ आती है, बट मुझे भी यही था कि मुझे भी समझ नहीं आती थी, तो जब हमारे
जो गांव के जेन जी होते हैं या जो
उनको अब थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी, वो भी समझते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा नहीं आती,
यूट्यूब की वजह से,
हाँ यूट्यूब की वजह से, इंटरनेट की वजह से अंग्रेजी का जो एक पहाड़ था वो टूट गया है, वो पत्थरों में कंकड़ बन गया, कंकड़ तो जरूर है पर पहले पहाड़ की तरफ आता था कि वो हंक कैसा फेंकता है वो, तो अब टूट गया है वो पहाड़, पर पत्थर तो है रास्ते में, डर तो लगता है। मैं जब गांव में था मैं भी अंग्रेजी सीखता था, मैं अंग्रेजी बोलता कि अंग्रेजी आई ये तो कहीं ना कहीं कर ही लेगो, मतलब इसको अंग्रेजी आती है कुछ ना कुछ कर लेगा, तो मैंने 3 साल अंग्रेजी सीखने में लगा दिया। अब आप यू थिंक इन इंग्लिश, आई थिंक इन हिंदी, देन आई कन्वर्ट इट इनटू इंग्लिश, देन आई विल स्पीक इंग्लिश, करेक्ट, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एफर्ट्स, एंड समटाइम्स व्हेन यू डोंट थिंक इन इंग्लिश द प्रोनंसिएशन एंड द फ्लो विल नॉट बी द सेम, इट विल ऑलवेज बी लाइक फ्लक्चुएटिंग दिस एंड दैट, इट विल बी गोइंग लाइक दिस ओनली। सो मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम था, तो मैंने 3 साल तो अंग्रेजी सीखने में लगा दिया। अब अंग्रेजी सीखने आप जाते हो तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेंगे, मैगजीन्स पढ़ना पड़ेगी।
आपने कैसे सीखी?
मैं वही क्लासेस जाने लगा, पिनाकिन सर के वो अंग्रेजी की कोचिंग चलाते थे।
पर कैसे सिखाते हैं?
पहले ग्रामर सिखा देते थे, सेंटेंस बनाना सिखा देते थे। पर मैंने जिंदगी में सीखा कि कोई नई आपको लैंग्वेज सीखना है तो आपको उसको अंदर डूबना पड़ता है, क्योंकि आप 2 घंटे क्लासेस जाते हो, बाकी के 22 घंटे तो आप बता रहे हो हिंदी में, आप जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज उसमें बता रहे हो, तो आप अंग्रेजी कैसे सीखोगे? तो मैंने क्या किया, मैं अपने गांव से बाइक लेके निकलता था। ये बड़ा ऑनेस्ट कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ पहुंचेगा। मैं बता रहा हूँ ये सच में, ये किसी ने हाथ नहीं करी। रणवीर भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब पूछते कैसे चालू किया, ठेला क्यों किया, कितना कमाते हो, फिर वही मेरी रिपीटेटिव चीजें आती है। मैं अपने गांव से, मेरे पापा के पास एक ही बाइक थी, मेरे पिताजी किसान थे प्लस वो कथा वार्ता करते थे, एक बाइक थी हमारे पास। मेरी सुबह 7 बजे से क्लासेस होती थी अंग्रेजी की, मैं 3 क्लासेस पढ़ता था और 2 पढ़ाता था। तो ग्रामर को रटा, फिर पता चला कि ग्रामर के टेंस सारे रट लो, और ज्यादा से ज्यादा समय मैंने पिनाकिन सर के यहीं बिताना चालू कर दिया कि यहीं रहूंगा, यहीं अंग्रेजी सीखूंगा। क्योंकि वहीं पे कुछ लोग आते थे मेरी बिरादरी के जिसको अंग्रेजी सीखनी थी, बिरादरी मतलब जिनको अंग्रेजी सीखने का ऑब्जेक्टिव था जिंदगी में, तो 25-50 लोग आते थे, तो उसको भी अंग्रेजी सीखनी, मुझे भी अंग्रेजी सीखनी, तो वो भी अंग्रेजी में बोलेगा, मैं भी अंग्रेजी टूटी फूटी बोलेंगे, पर बोलेंगे तो सॉरी, जैसे वो मूवी 30 सुपर 30 में आप देखते होंगे, यही हुआ मेरे साथ। फिर ग्रुप डिस्कशन और इसमें ज्यादा टाइम इन्वेस्ट किया, फिर सुपर बैच आती थी शाम को, अच्छे अच्छे घर परिवार के लोग, उनके साथ बैठना उठना चालू किया। फिर धीरे धीरे इंदौर शहर जाना चालू किया, स्टार्टअप के साथ बैठना चालू किया। फिर
फिल्में देखी?
फिल्में नहीं देखता, आई एम नॉट अ फिल्मी गाय। मैं बॉलीवुड क्रिकेट की कमेंट्री बहुत सुनी, और न्यूज आ रही, पॉलिटिकल न्यूज, ग्लोबल पॉलिटिक्स क्या होती है, वो सब न्यूज आ रहा था उस टाइम, अर्नो गोस्वामी का उसको सुनता था, इंडिया टुडे उनको सुनता था, फिर वो क्या फ्लो में बोलते हैं, फिर मैं भी रिपीट करने की कोशिश करता था।
मतलब किसी, आई थिंक मनीष भाई ने मेरे को कहा कि इंग्लिश पॉडकास्ट को कभी स्टॉप मत करना, क्योंकि जो ऑडियंस को इंग्लिश सीखना है वो भी इंग्लिश पॉडकास्ट सुनती है,
और आप सबटाइटल, आजकल सबटाइटल आ जाते हैं तो अच्छा लगता है। अरे देखो, अंग्रेजी कोई भी भाषा आपको सीखनी है तो आपको लिखते आना चाहिए, पढ़ते आना चाहिए, सुनते आना चाहिए, ये साथ ही 3-4 चीज होती है जो आपको सब करनी पड़ेगी, नहीं तो शायद आप राइटिंग में अच्छे हो गए तो आप कंटेंट राइटर बन जाओगे, आप बोल नहीं पाओगे।
ओके, मैं एक बहुत थोड़े से कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक के पास जाना चाहूंगा, टैबू सब्जेक्ट्स जैसे कि सेक्स, जैसे कि कामसूत्रा, और क्या होता है टैबू सब्जेक्ट्स, रिलीजियस कॉन्वर्सेशन, वन रिलीजन वर्सेस अनदर, रूरल इंडिया यानी कि असली भारत, इन चीजों के बारे में आजकल सोच रहे LGBTQ कम्युनिटी?
थोड़ा मुश्किल है, LGBT गे, आप लेस्बियन की अगर बात करो तो खैर बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं है।
ओके,
दूसरा,
पर वहां भी होमोसेक्सुअलिटी होती है?
मतलब नहीं होती है, मतलब इतना डर है अपने आप में, सेक्स की बात करना इज वेरी डिफिकल्ट इन रूरल एरिया, और वो उसको एक ऐसा समझते कि गलत है
अभी भी।
हाँ, अभी भी मतलब अभी क्या, वो तो अगले 20-25-50 साल तक शायद होगा,
50 साल 25 साल
तो एटलीस्ट होगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट। शायद अभी की जो एज है वो खुल के बात करे अपने सर्कल में,
क्योंकि अर्बन जेंजी एकदम खुल चुके हैं,
वो इतने नहीं खुले। और वहां पे भी जो आप बात करो सेक्सुअल एजुकेशन की, वो बातें तो कभी होती नहीं है, वो डिबेट ही नहीं होता है। सेक्स करना है किसी के साथ, वो बात हो सकती है, सेक्सुअल एजुकेशन इज टोटली डिफरेंट, देयर आर 2 टॉपिक्स, एंड वो यंग होके डिजायर ऑफ समथिंग इज डिफरेंट।
प्री मैरिटल सेक्स होता है वो?
हाँ
होता है,
अभी आजकल बहुत ज्यादा चल रही है।
okay.
और अभी क्या है, कनेक्टिविटी ऑफ रूरल टू द सिटीज बढ़ गया है, तो स्मार्टनेस भी आ गई, लोग अच्छे भी दिखते हैं, काम सबका जो भी नीड है, फिजिकल नीड जो जिसकी भी होती है वो पूरी करना चालू कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है लोगों ने। और ये बढ़ रहा है, और ये बड़ी तेजी से बढ़ेगा, और इंटरनेट से तो और बढ़ गया है।
डेटिंग कल्चर भी स्टार्ट हुआ?
डेटिंग कल्चर तो नहीं है,
नहीं है
डेटिंग कल्चर, आज भी गांव में बहुत सारे लोगों की बच्चियों की शादी 13-14-15 सालों में कर दी जाती है।
okay.
दूसरा, डेटिंग कल्चर नहीं होने के कारण भी कहीं ना कहीं हमारा देश थोड़ा सा स्लो है, क्योंकि डेटिंग कल्चर से आप जब तक अपोजिट सेक्स को आप कन्विंस नहीं कर सकते हो, जैसे मेल फीमेल को, फीमेल मेल को, तो आपको आप कन्विंसिंग पावर अगर आप में नहीं है, आप उसको 6-8 महीने का पेशेंस नहीं है, कैसे उसको पटा के रखना है, कैसे बना के रखना है उस रिलेशनशिप को, वही तो व्यापार भी आगे जाके, वही तो आगे जाके आपको एंटरप्रेन्योरशिप स्किल है। मैं बोलता हूँ अगर आप एंटरप्रेन्योर बनो ना बनो, आपको एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स तो आनी चाहिए। अगर आप 5 लड़कियों को, खाली ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियों को या लड़कों को, आप डेटिंग कल्चर करते हो, आप बातचीत करते हो, आज की आप, मैं आपको बताता हूँ, अगर इंटरनेट ना हो तो हजारों लाखों बच्चे, करोड़ों लोग किसी अपोजिट जेंडर से जिंदगी में कभी बात ही नहीं किया होते हैं। उनको डर लगता है इस लड़की से क्या बात करूंगा या लड़के से क्या बात करूंगा, कहीं ये मेरा मिसयूज तो नहीं कर लेगा, तो एक डर रहता है। तो धीरे धीरे इंटरनेट की वजह से वो दूरियां खत्म होती जा रही, वही पहाड़ टूट गया है पर बड़े बड़े पत्थर तो अभी भी बाकी।
ओके, ठीक है, इस बातचीत को साफ सुथरा बना देते हैं। आपको संदीप महेश्वरी के शो का एक्सपीरियंस के बारे में?
संदीप भाई, संदीप सर का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा, जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा, फर्स्ट टाइम आई वेंट टू मीट हिम।
उनकी वाइब कैसी है?
ही इज एन अमेजिंग गाय, मैं बोलता हूँ मोटिवेशन एक ऐसा ड्रग है जो सब आदमी लेता है, आप भी लेते हो, आप शायद संदीप भाई से नहीं लेते होंगे, किसी और बड़े गुरुजी से लेते होंगे। मोटिवेशन तो भैया हर आदमी लेता है, आप बोलते नहीं हो, करता सब कुछ है, बताता कोई नहीं, वो थ्री इडियट्स वाला डायलॉग याद आ रहा है, इट्स मोर लाइक अ सेक्स, एवरीबॉडी नीड्स इट बट नोबडी शेयर्स इट, हु डजंट नीड मोटिवेशन, क्योंकि आप किस स्टेज पे हो तो शायद आपके मोटिवेशनल गुरुज बदल गए होंगे। मोटिवेशन एक ऐसी चीज है, हर आदमी हारता है, हर आदमी थकता है। संदीप सर ने जो रूरल इंडिया हो या एक्चुअल जो भारत के जो जेंजीज है, युवा है, और आज की नहीं, 10-15-20 सालों से ये काम कर रहे हैं, तो हमारे पहले वाली जनरेशन ने भी उनको सुना है। और मैं आपको बता दूं, किसी भी आदमी को अगर सक्सेस की तरफ बढ़ना है, पैसे वाला बनना है, व्यापार खड़ा करना है, वो 10-15-20-25 वीडियो मोटिवेशन के देख देख के उसमें अंदर फूटता है। हम भी महेश्वरी जी के वीडियो देखते थे, हम भी दूसरे मोटिवेशन स्पीकर की वीडियो देखते, तब अंदर आग छुटती, कुछ करते हैं भैया, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, मैं चाय दिख गई तो चालू कर दिया। तो शुरू के अगर आप किसी गांव के एक बच्चे को जिसको कुछ नहीं आता, उसका अगर आप बोलो कि इसको व्यापारी बनाना है, इसको सक्सेसफुल बनाना है, पैसा कमाए, रोजगार दे, रोजगार लेना, वो उसके 2-3 साल तो वीडियोज देखने में चले जाएंगे आपके और मेरे और संदीप माहेश्वरी जैसे लोगों के।
जो रूरल जनता है वो YouTube की शुरुआत कहाँ से करती है, अदर देन फिल्म्स एंड म्यूजिक, मतलब ये पता कि हर कोई फिल्म देखता है,
एक मोटिवेशन, मूवीज और गाने को अगर हटा दो, मोटिवेशन
और कॉमेडी को अगर हटा,
कॉमेडी भी हटा, देखो कॉमेडी म्यूजिक और मूवी को तो आपको हटा ही देना चाहिए, क्योंकि वो उनका पैसिव लर्निंग है, लर्निंग तो है ही नहीं, वो उनका एंटरटेनमेंट है, करेक्ट। अब अगर आदमी को जिंदगी में कुछ करना है तो एक्टिव लर्निंग में क्या आएगा, एक तो पहला मोटिवेशन आएगा,
पर उतनी समझ होती है
कैसी,
देखो स्किलिंग अप का माइंडसेट होता है आजकल के यूथ में, दुनिया भर के यूथ में, पर स्किलिंग अप से पहले यानी कि स्किल्स सीखने से पहले मोटिवेशन चाहिए रहती है, तो वो थॉट्स होते हैं उनके दिमाग
इतने
में,
इतने भी नहीं होते। देखो क्या है, गूगल करना और यूट्यूब पे क्या सर्च करना अपने आप में वो भी एक स्किल है,
वही मैं पूछ रहा हूँ,
क्या सर्च करेगा आदमी,
इसकी शुरुआत कहाँ से होती,
शुरुआत मोटिवेशनल वीडियो से भी होती है, और वो कैसे होती है, वो भी रिकमेंडेशन से होती है भैया,
वो ये पूछना,
आप सर्च नहीं कर सकते मोटिवेशन, इट मोर लाइक कि मैं 4 मूवी देखी उसके बीच में आपका और मेरा वीडियो आ गया, संदीप माहेश्वरी जी का वीडियो आ गया, मेरे को देखना है मजबूरी में, इट्स मोर लाइक एन पैसिव लर्निंग, मैंने सर्च नहीं किया, वो अपने आप आया है, क्लिक हो गया। और आजकल जैसे जो स्टॉक वगैरह कर रहे प्लेटफॉर्म ने, तो उनका थंबनेल इतने खतरनाक होते हैं कि 5,000 से 5 करोड़ कैसे कमाए, तो आदमी क्लिक करेगा ही करेगा। इन्होंने जो स्टॉक ने जो किया वो अपने आप में एक हिस्ट्री है, एक उन्होंने कितना बड़ा ब्रेक थ्रू किया, छोटे मोटे जैसे हम जैसे लोगों को उन्होंने फेमस बनाया, हम जैसे लोगों को इनवाइट करने लगा, तो लोगों को पता चला ये मेरे जैसा ही था पहले, अब ऐसा हो गया है, ताकि मैं इसका वीडियो अगर देख लूँ, इसकी जर्नी फॉलो करने लगूँ, तो शायद मैं भी ऐसा कर लूंगा।
पर इसी मार्केट को कैसे ब्रेक थ्रू करें,
इसमें मुझे लगता है मोटिवेशन एंड स्किल का जो मार्केट इंडिया में बहुत बढ़ेगा, अभी कुछ भी नहीं है, इट इज 5-7%, और ये स्ट्रक्चर्ड वे में बढ़ेगा, पर ये ऑनलाइन तक सीमित ना होकर ऑफलाइन भी जिस लोगों ने कर दिया, अपने सेंटर्स डाल दिए या वहां तक गाँव तक पहुंचा है, या जैसे पुराने टाइम पे गाँव में पेस्टिसाइड्स हो गई या बीजों की कंपनी हो गई या कोई छाते की कंपनी या कोई गाड़ी की कंपनी जाती थी और बताती थी हमारी गाड़ी ऐसी है, हमारी कार ऐसी चलती है, हमारी बाइक ऐसी, तो हम लोगों को भी एक एक एजेंट्स को हमारे लोगों को भेजना पड़ेगा गाँव में, छोटे छोटे शहरों में, कि भाई ये आपको सीखना है तो ये 25,000 का कोर्स कर लो, ऐसे कर सकोगे। तो ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन जाके देश का भला हो सकता है, सिर्फ ऑनलाइन से नहीं होगा,
यहाँ पे एक बिजनेस आइडिया दे रहे हो लिसनर्स को,
क्योंकि प्रॉब्लम ये है, ट्रस्ट इज अ वेरी बिग इशू इन इंडिया, पीपल विल नॉट पे यू 1 lakh rupees फॉर समथिंग की बिना देखे परखे, लोग डरते हैं क्योंकि लोगों के साथ पहले भी बहुत फ्रॉड हुए हैं इस देश में, शिक्षा नहीं होने के कारण बहुत सारे लोगों ने मिसयूज किया उसका,
सहारा
लिया है, मिसमैनेजमेंट किया है, लोगों को बेवकूफ बनाया है, तो लोग बेवकूफ नहीं बनना चाहते, लोग डरते हैं कि कुछ हो ना जाए, पैसा दे देंगे उसके बाद क्या, इसीलिए कैश ऑन डिलीवरी का सिस्टम इंडिया में आया, तो ऑनलाइन पहले कैश ऑन डिलीवरी सालों तक आदमी करता है, फिर जाके UPI के माध्यम से आज वो पेमेंट करता है, क्योंकि उसको अब डर नहीं है। तो वो बैरियर्स, वो डर, वो ऐसे बादल जो डर के बादल है, धीरे धीरे ही इंडिया से खत्म होंगे, और फिर ऑनलाइन नहीं हो सकते, ऑफलाइन करना पड़ेगा।
आप में इतनी आग कहां से आती है?
मुझे जिंदगी में रणवीर भाई कुछ करना है यार, मतलब मैं जब भी सोता भी हूं, कभी जागता हूं, तो मेरे को लगता है कहीं वेस्ट तो नहीं कर रहा हूं टाइम, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं देश 1947 खैर आजादी की लड़ाई तो 1857 से चालू हो गई, तो उसके भी पहले से चालू हो गई थी मंगल पांडे की बात की, दूसरी आजादी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, हम आजाद हो गए, चंद्रशेखर आजाद जी, भगत सिंह और ऐसे सदगुरु, उन्होंने बहुत सारे राजगुरु, उन्होंने बहुत सारे लोगों ने अपना बलिदान दिया, उनके पास कोई लाखों करोड़ों नहीं थे, उनके साथ कोई सेल्फियां नहीं खींचा था, उनको कोई नहीं पूछता था, पर उन्होंने भी सेक्रीफाइस दिए, क्योंकि अंग्रेजों से हमें आजादी चाहिए थी, आज आजादी चाहिए हमें विचारों की आजादी चाहिए, आज आजादी चाहिए कि हर घर से आदमी एक स्टार्टअप करे, आज आजादी चाहिए कि हर घर से एक युवा जो पैदा हुआ है उनके घर में वो कुछ करे, अपने माँ बाप के लाखों रुपए खर्च करके जो एजुकेशन लेता है, वो स्मार्टफोन लेता है, ट्रेवल भी करता है, तो क्या वो रिटर्न दे रहा है सोसाइटी को? तो मैं सोचता हूँ कि अगर इडियट लोगों को मैं देखता हूँ वो हीरो बन जाते हैं, जिन्होंने कुछ कोई कंट्रोवर्शियल बोल देंगे, कुछ किसी की गाली गलौज कर देंगे, वो लोग हीरो बन रहे हैं, तो क्यों ना हम जैसे लोग कुछ करें और समाज को एक आईना दिखाए कि आप भी सक्सेसफुल बन सकते हो। क्योंकि हर आदमी, रणवीर भाई मैं आपको बता दूं, अपनी पहचान बनाने के लिए दौड़ रहे हैं। टाइम लगेगा पर हर आदमी कोशिश करता है कि वो अपना पहला ट्रिप फ्लाइट पकड़े, पहला विदेश ट्रिप ले, अपनी ब्रांडेड कपड़े पहने, 2-4 हज़ार के जो भी ब्रांडेड कंपनी के जूते हैं वो खरीदे, वो महंगी वाली हेयर स्टाइल कराए, कटिंग कराए, समझ रहे हो, बड़ा रेबन का जो भी चश्मा होता है वो खरीदे, वो जो जो देख रहा है इंटरनेट पे, वो खुद के अंदर उसके अंदर है कहीं ना कहीं छुपा हुआ कि मेरे को भी करना है।
पर आपके बचपन में ऐसी कोई चीज़ हुई थी?
नो, हम देखो क्या है ना, हम मैं भी बड़ा सामान्य परिवार में पैदा हुआ, हमारे पिताजी ने बहुत संघर्ष किया है, वो साइकिल से अगरबत्तियाँ बेचते थे, पिताजी कथाएँ करते थे, सत्यनारायण की कथा, उनको 51 रुपये मिलते थे, 101 रुपये मिलते थे, चिल्लर मिलती थी उनको आरतियों में। तो उस टाइम पे मेरे पिताजी को पता था कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊं, तो उन्होंने शिक्षा के लिए हमें पास का जो शहर था धार वहाँ भेजा। मेरे भाई ने बहुत संघर्ष किया, तो मैं देखता था और मेरे पिताजी का मजाक भी बहुत उड़ता था। पिताजी मतलब क्या है ना, आदमी कोई करता है ना कुछ तो उसका मजाक तोड़ेगा, तो उस टाइम से यार कि कुछ करेंगे यार, और युवा थे, पापा ने दादा ने संघर्ष किया, दादाजी कम उम्र में उनका पैर कट गया था तो पिताजी के ऊपर बोझ जल्दी आ गया था, और अंकल जी वगैरह मतलब परिवार में हमने देखा है, गरीबी देखी है मैंने भी, गरीबी जैसे मतलब गरीबी, इतनी भी गरीबी नहीं कि खाने के पैसे नहीं थे, मतलब वी आर फ्रॉम गुड फैमिली, बट कंपेरेटिवली जब मैं इंटरनेट पे देखने लगा, पिनाकिन सर के यहाँ जाने लगा, बड़े बड़े शहरों में घूमने लगा, तो पता चला कि हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है। कल को क्या होता है, आज भी देखो गाँव में मिडिल क्लास लोगों में एक बीमारी आ जाती है आदमी को, पूरा आप 10 साल पीछे कर देती, एक कोई एक्सीडेंट हो गया उसके परिवार घर में, कोई कैंसर हो गया, कोई हार्ट अटैक आ गया, 10 साल आदमी का घर पीछे चले जाते हैं। एक लड़की की शादी, लड़के की शादी में लोग 20-20 लाख रुपए खर्च करते हैं, 25-25 लाख रुपए खर्च करते हैं, और जिंदगी भर वो बाप इकट्ठा करता है पैसे, 7-8 साल इकट्ठा करता है, वो खुद अपने चप्पल भी नहीं बदलता है, वो जूते भी नहीं खरीदता, नए कपड़े भी नहीं खरीदता, वो बिल्कुल गरीब रहता है, मध्यम वर्गीय रहता है, अपने बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए और शादी के लिए पैसा इकट्ठा करता है, शादी होने के अगले 7-8 साल तक उस कर्ज को वापस पूरा करने के लिए मेहनत करता है।
मेरी एक राय है इस चीज़ पर, जितना मैंने नोटिस किया, और मेरा बचपन आपके बचपन से बहुत अलग था, और ये ऑनेस्ट बात है, पर मैंने दुनिया बहुत देखी है करियर स्टार्ट होने के बाद भी, और मैंने ये नोटिस किया कि भारत में हम सम्मान को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं,
बहुत ज़्यादा,
और ये ऑनेस्टली गलती,
पाप है हमारा,
पाप है,
दिस इज द लाइक, यही गलत है,
क्यों खोज रहे हम सम्मान,
हर आदमी ऐसे ही सिर झुका के कि मेरे को सम्मान दो, Everybody wants to be feel important.
और ये सिर्फ हमारी सोसाइटी में, ये दुनिया भर की सोसाइटी में इतना नहीं है।
ईगो इज बिगेस्ट इशू। आप, मैं बताता हूँ, पत्रिका में मेरा नाम नहीं लिखा तो बुरा मान जाते हैं।
शादी, जॉब, शादी के बारे में बात, ये बेसिकली ईगो
गेम है। सोसाइटी में आपको वो दिखाना है कि मेरे इतने लोग आए, मैंने इतने लोगों को 3-3 हज़ार, 3.5-4 हज़ार लोगों को भोजन प्रसादी दी जाती है।
इसलिए आज मेरे एज के लोग शहरों में मोस्टली गाड़ियां नहीं खरीदते, घर नहीं खरीदते, या तो उबर ओला यूज करते हैं, टैक्सी यूज करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, और घर के लिए रेंट करते हैं।
और है ना, ये सोसाइटी डेवलप भी ऐसी हुई है रणवीर भाई, जब मैं बता दो, पुराने जो व्यापारी लोग हुआ करते होंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट होने, उन्होंने बोल दिया दहेज देना जरूरी है, क्योंकि उनके दुकान चलानी है, उनको अपना सामान बेचना है, एक ऐसा नहीं कैसे अंग्रेजों ने डिवाइडेड रूल वाली अपना ये चीजें, तो ये मान सम्मान का भी कल्चर कई तो कमर्शलाइजेशन की वजह से भी हुआ होगा, कि बड़े बड़े राजाओं को उस टाइम पे अंग्रेजों ने कहा होगा कि भाई तेरे को इज्जत मिलनी चाहिए, तू इस गांव का नेता है, तो इस गांव का या इस एरिया का तू राजा है, तो तुझे सम्मान की बात कर, ताकि बाकी लोग तुझसे झुक के रहेंगे। वो बीजोरोपण ही ऐसा, वो डीएनए तक चले गया। तो आज भी हम लोग कभी भी, मैं मान सम्मान के पीछे नहीं भागता कि मेरे को कितने लोग पूछ रहे हैं, अगर मान सम्मान के पीछे भागता तो मैं इतना शिक्षित होने के बाद भी ठेला नहीं डालता रोड पे।
अपने इस पॉडकास्ट की शुरुआत में रोस्टिंग के बारे में बात करी, क्या फील होता आपको?
आई टेक रोस्टिंग एज अ टू वे। एक तो जो रोस्टर है, एक नया करियर आ रहा है अभी जनता में, तो उनको अपनी दुकान चलानी है तो रोस्टिंग तो करेंगे, या रोस्टिंग होनी भी चाहिए, वो चाहे मेरी हो आपकी चलता रहता है। दूसरा, रोस्टिंग और जो भी ट्रोलिंग होती है वो एक फ्लैट वाटर समझो, फ्लैट वाटर पे पत्थर गिरता है, तो उससे क्या होता है, कुछ वेव जो कभी ना आपकी होने वाली थी वो भी आपकी तरफ आ जाती
है। ऑडियंस
जनता, क्योंकि सबके अंदर एक सॉफ्ट हार्ट होता है। आप 10 लोगों में किसी एक बंदे की बुराई करो, एक या दो बंदे वर्स्ट केस सिनेरियो में भी, अरे यार रणवीर अच्छा है, इतना बुरा भी नहीं है, दो भी आप जो आपको नहीं जानते, क्योंकि वो भी चाहते हैं मैं डिफरेंट कुछ करूं। मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ अभी रोस्टिंग में आई कमेंटेड कि तुमने अच्छा रोस्ट किया है, क्योंकि तुम्हारा करियर है, तुम कर रहे हो। आई गॉट ऑलमोस्ट 1 लाख सब्सक्राइबर इन जस्ट अ वीक ओनली, एंड देन द न्यू वेव केम टू मी।
आई ऑल्सो फील कि आपके खुद के कंटेंट पर चेक्स मिल जाते हैं आपको, कि अगर आप कुछ गलत तरीके से कुछ कह रहे हो,
कि आपको ऐसे लोग आके बताओ, कभी कभी रात में भी आपको ख्याल कि कहीं मैंने गलती कर दी हो, क्योंकि इस टाइम पे रणवीर भाई जहाँ लोग बुरा भी जल्दी मान जाते हैं, वहां पे रोस्टर जो है ना आपको आईना भी दिखाते हैं कि आप क्या गलत हो सकता है मैंने कोई गलतियां करी, आप लोग मेरी तारीफ ही तारीफ कर रहे हो, मेरे साथ सेल्फी सेल्फी ले रहे हो, इज्जत इज्जत करो कि एमबीए चालान ने बहुत अच्छा काम किया। जब तक ऐसे लोग मुझे आईना नहीं दिखाएंगे, मुझे अपनी औकात या मेरे में कोई गलती अगर नहीं प्रदर्शित करेंगे, तो मुझे सच क्या है और झूठ क्या है उसमें फर्क कैसे पता चलेगा?
पिता बनने का कोई इरादा है आपके दिल में?
शादी करेंगे और फिर पिता भी बनेंगे और पिता बनना चाहिए बिल्कुल, घर परिवार को साथ में लेके चलना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं पारिवारिक आदमी हूँ और मैं सोचता हूँ वो सफलता, वो पैसा किसी काम का नहीं अगर आप आपका परिवार, आपका समाज, आपका धर्म आपके साथ में।
जिस तरह से आपने अपने 20s बिताए, आप अपने 30s को भी उसी तरह बिताना चाहोगे कि कम काम करना चाहोगे?
काम में बहुत करना, मैं अंतिम सांस तक काम करना चाहूंगा,
काम बढ़ाना चाहोगे?
काम बढ़ेगा और जिम्मेदारियां लेना चाहता हूँ, फोल्डिंग हैंड्स, और कुछ करते रहना चाहता हूँ, कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ सोसाइटी के लिए, खुद के लिए, खुद भी कैपेबल बनूंगा और लोगों को भी कैपेबल बनूंगा। देखो वो बोलते हैं कि आप खुद तो पहले कुछ कर लो, खुद 2 रुपया कमाओगे तो किसी को 2 पैसा दान कर पाओगे या 2 पैसे की मदद कर पाओगे। आप बिना खाली हाथ से आप कैसे लोगों की मदद करोगे? मैं अपनी अंतिम सांस तक काम करना चाहता हूँ और मैं कुछ सालों के बाद तो सच में देश का हो जाऊंगा। मुझे सच में चेंज करना है रूरल इंडिया को। हर स्टार्टअप घर घर स्टार्टअप की बात करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि घर से एक आदमी निकले जो कुछ करे।
तो 10 सालों में कंटेंट किस तरह का निकलेगा इंडिया में?
हर जो चीज़ जो यूट्यूब पे हाउ टू से चालू होती है उसका कॉन्टेंट निकलेगा, और
स्किल बेस्ड, मतलब
इट्स नॉट लाइक एन स्किल बेस्ड। स्किल तो आप बोल दो कि कैमरा कैसे चलाते, एक्सेल शीट कैसे चलाते, मैकेनिक की दुकान कैसे चालू करें, या पहला पार्लर का दुकान कैसे चालू करें, रेस्टोरेंट बिजनेस पूरा कैसे चालू करें, इसका दुकान आप कोर्स बना दो, हेयर सलून कैसे डाले, बुटीक चालू कैसे करें, और इट्स नॉट अबाउट चालू कैसे करें, पैसा इन्वेस्ट कितना करें उसका पूरा मैकेनिक, जैसे सवाल नहीं होते थे सम करके नीचे आते हैंड्स प्रूव, आपने 10,000 डाले और ठेला एमबी चाला की चालू किया तो ये होगा, 1,00,000 डाले तो ये होगा, 10,00,000 डाले तो ये होगा, आप बता दो कि आप ए पे हो, बी पे हो, सी पे हो। इट्स मोर लाइक वही बड़े पहाड़ को आपने छोटा छोटा कंकड़ तोड़ दिया, तो मैं बोलता हूँ हाथी खाना है, हाथी को 1,000 टुकड़ों में काट दो तो आप हाथी भी खा सकते, 1,000 दिन लगेंगे। तो वही दुनिया में बड़े बड़े जो कॉन्सेप्ट है, बड़े बड़े जो व्यापार है, उनको तोड़ना पड़ेगा।
आप ये मानते हो कि शॉर्ट कॉन्टेंट जैसे रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स, तब तक
शॉर्ट्स कॉन्टेंट हमेशा रहेगा? इट्स मोर लाइक कि आदमी 50 मिनट का या 25 मिनट का एक बड़ा वीडियो देखे, इस बीच में उसको 30-30 सेकंड के 1-1 मिनट के 50 वीडियो देखने को मिल जाते हैं। तो इसके 2 आप एनालिसिस कर सकते हो, एक तो उसको टाइम पास करना है, दूसरा उसको वैरायटीज ऑफ ऑप्शंस मिल रहे, एक वीडियो देख के उसको एक कंटेंट का जरिया मिल रहा है, एक पर्सपेक्टिव मिल रहा है, पर उसी मिनट में अगर वो 50 दूसरे छोटे छोटे वीडियो देखे तो 50 पर्सपेक्टिव उसको मिल रहे हैं, उसमें से वो 1 या 2 चूज करके अपनी जिंदगी उधर बना सकते हैं। वो टाइम वेस्ट नहीं करेगा कि मैं 50 मिनट की रणवीर और प्रफुल्ल की पॉडकास्ट नहीं सुनूंगा, क्योंकि इस 50 मिनट में मैं 50 डिफरेंट इंडिविजुअल क्रिएटर्स को सुनूंगा, शायद कॉमेडियंस को सुनूंगा, म्यूजिक वालों को सुनूंगा, कोई आर्टिस्ट को देखूंगा, तो मैं वो बनने की कोशिश करूंगा, फिर वहां से मैं तराशूंगा। जैसे मैंने भी 50,000-00,000 लोगों को फॉलो करता था, फिर समझा कि मुझे अभी एंटरप्रेन्योर बनना है, फिर मुझे इन्वेस्टर बनना है, तो इन्वेस्टर वालों का फॉलो किया, बाकी को अनफॉलो कर दिया, मुझे जो बनना है फिर वही लोग मेरे फिल्टर लगते गए। पर फिल्टर कब लगेगा? जब आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन होंगे। आज से 4 साल पहले जब इंटरनेट नहीं था तो गांव में छोटे शहरों में लोगों के ऑप्शन क्या थे जिंदगी में कुछ करने के? या तो कोई दुकान, इंजीनियरिंग, एमबीबीएस या डॉक्टरेट। आज आप देखो तो 1,000 इंडिविजुअल करियर ऑप्शंस है लोगों के पास जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट, बिकॉज दे हैड सो मेनी ऑप्शन टू चूज फ्रॉम। और हर एक इंडिविजुअल का अपना एक सुपर पावर होता है, जो मैंने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होने के तो बोला था, तो लोगों को लग रहा है कि मैं ये कर सकता हूँ, ये मेरे हिसाब का है, मेरी औकात के हिसाब का है, मेरे सरकमस्टांसेस, मेरे इन्वेस्टमेंट, मेरे माँ बाप क्या है, उनके बीमार तो नहीं है, वो गाँव से है, बड़े शहर से, छोटे शहर से, उस हिसाब से आदमी अपने हिसाब को क्या बोलते हैं पैकेज डिजाइन कर रहा है, अपना करियर अपनी अपने हिसाब से डिजाइन करने की कोशिश कर रहा है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट तो इट विल गो।
प्रफुल भाई
डीप कॉन्वर्सेशन था,
क्या कहना चाहोगे अब इस पॉडकास्ट के एंड में, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस?
एक्सपीरियंस यार बहुत अच्छा है, और ये पॉडकास्ट तो बड़े दिल के करीब है, मैंने आपकी लगभग सारी पॉडकास्ट देखता हूँ मैं, और मैं हमेशा चाहता कि मैं कब आऊँगा भाई, और आप लोगों ने खैर मैं जब मेरी डिजर्विंग रहा आपने मुझे इन्वाइट किया, और बाकी बहुत अच्छा लग रहा है, और आपके पॉडकास्ट से और आपकी पूरी जिंदगी रणवीर जो आपने डॉक्यूमेंट करी है, जिससे मैं भी बहुत सीखा हूँ, आपसे मैं बहुत सीखा हूँ, मैं तो बिजनेसमैन था, साथ में अपनी लाइफ जर्नी डॉक्यूमेंट करते गया, इंस्टाग्राम बढ़ाया, ट्विटर बढ़ाया, तो आप जैसे लोगों ने अगर मुझे इतना आगे पुश किया है तो कितने हजारों लाखों लोगों को आपने पुश किया आपको पता नहीं है, तो उनकी दुआएं हैं जो आप इतना सक्सेसफुल हो।
थैंक यू ब्रो। आपके बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा।
यस,
इतना ज्यादा ओपन इंसान मैंने आज तक शायद शो पे नहीं देखा। मतलब जो आपके दिल में है वही चीज आप कहते हो। कुछ लोग इस बात को मुफट
बोलते हैं।
मानेंगे, आई डोंट, मतलब आई फील डेफिनेटली आप मुफट हो,
मुफट बट, हाँ
अच्छी बात,
सिलेक्टिव हूँ, बुरा शब्द तो नहीं बोलूंगा किसी को, गाली तो नहीं दूंगा।
हाँ नहीं नहीं वैसे नहीं, मतलब
जो सत्य वो सत्य।
हाँ, जो आपके दिल में है वो आप खुल के बात करते हो। शायद ये आपके चाइल्डहुड की वजह से, आपके बचपन की वजह से,
यही स्ट्रेंथ है और यही वीकनेस।
मतलब आई फील वीकनेस भी टाइम के साथ पॉलिश हो सकती है।
और देखो क्या है, कभी कभी क्या होता है, आप ये देखो कि आपकी कोई अगर स्ट्रेंथ है, अगर वो 100 में से 90 नंबर उसके हैं और 10 नंबर वीकनेस के हैं, तो उस 90 के उस 10 के चक्कर में 90 को मत गवाओ।
देखो शहरों में हर कोई नकाब पहनता है, ये सच है, और वो वॉलंटियरली यानी कि खुद के चॉइस से नहीं पहनते, उन्हें पहनना पड़ता है शहरों में।
वो गलत भी नहीं है, उसको डिजाइनिंग ऐसी हुई, उनका नरिशिंग ऐसी हुई है, और शायद वो समय की और उस जगह की मांग होगी। हम भी धीरे धीरे थोड़ा कम नकाब खोल रहे हैं हमारा, धीरे धीरे हम भी सिलेक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं, पर जो नेचुरल है, जो जन्मजात डीएनए में, वो चीज एकदम से नहीं बदलेगी।
शायद इसलिए मुझे आपसे बात करके बहुत मजा आया। मतलब जब आपने बात करना स्टार्ट ही किया ना, मुझे बहुत मजा आने लगा कि यार हाँ ये बहुत बढ़िया एपिसोड बनेगा।
थैंक यू,
बस यही कहना चाहूंगा। आई मीन गॉड इज विथ यू यार, भगवान आपके साथ है हमेशा, एंड जो भी आप करना चाहते हो, आई विश यू लाइक इवन मोर एनर्जी।
थैंक यू। भगवान और आप जैसे लोगों का प्यार और आशीर्वाद बना रहे तो आगे बढ़ती जाएगी जिंदगी, क्योंकि भारत जैसे देश में जहाँ एमबीए चावल अब इतना हंसी मजाक उड़ता था और उसको इतना प्यार अगर मिल रहा है तो कहीं ना कहीं लोगों की दुआओं की वजह से ही है।
100% भाई। और एंड में एक चीज कहना चाहूंगा कि ये बस आपकी शुरुआत है भाई।
क्या बात है, बस शुरुआत ही समझ रहा हूँ मैं, और बड़ी तेजी से मैं बढ़ रहा हूँ आगे। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू ब्रदर।
थैंक यू।
नमस्ते, और प्लीज इस शो पर लौट के आना प्रफुल्ल भाई।
बस आप बुला लो, और भाई चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कुछ 3-4 मिलियन दुनिया है आपकी,
पता भी नहीं,
फटाक से 10 मिलियन करो यार, ही डिजर्व्स 10 मिलियन, इंग्लिश वाले भी और हिंदी वाले भी।
थैंक यू,
इन्हीं की वजह से हम लोगों का 1 मिलियन हो गया, तो ये तो भैया गंगा है, इनको करो।
It's the magic of the team as well, but thank you.
पूरा टीम बहुत अच्छा करा, रणवीर भाई की पूरी टीम को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इनवाइट किया। और ये बंदा तो सामने दिख रहा है, इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, जैसे एमबीए चावल मेरा चेहरा दिखता है, पीछे के लोग नहीं दिखते। तो कभी भी एक इंसान के आइकॉन या उसके चेहरे को मत देखो कि इसने अकेले ने ऐसा सब कर दिया, पूरा परिवार होता है, पूरी टीम होती है, जिनका सबका छोटा छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, बूंद बूंद से सागर बनता है, तो ये सब चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते,
धन्यवाद। दोस्तों ये था आज का स्पेशल एपिसोड। एक्चुअली जस्ट प्रफुल्ल भाई अभी निकले हैं, मुझे बहुत आग फील हो रही है, मोटिवेशन फील हो रही है। आई फील कि ये एक बहुत ज़रूरी पॉडकास्ट था मेरे लिए, मुझे उनके पर्सपेक्टिव्स जानने का मौका मिला। पॉडकास्टिंग का जॉय, पॉडकास्टिंग का सबसे बड़ा तोहफा पॉडकास्टर के लिए यही होता है कि हर पॉडकास्ट के थ्रू आपको एक किताब पढ़ने का मौका मिलता है, और ऐसे इंसान की लाइफ के बारे में अगर आपने जाना तो वो वाली किताब ना आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है, आपके खुद के पर्सपेक्टिव्स के लिए, आपके खुद के बिजनेस प्लान्स के लिए, और आपके खुद के नजरिए के लिए। प्रफुल्ल भाई के साथ ये हमारा सिर्फ पहला एपिसोड था, डेफिनेटली ये लौट कर आएंगे टीआरएस हिंदी पर। अगर आप टीआरएस हिंदी पहली बार देख रहे हैं तो हमने बहुत बड़ी लाइब्रेरी बना दी है पॉडकास्ट की, देखिए, एक्सप्लोर कीजिए और सीखिए, क्योंकि हम साथ में इंडिया को, भारत को सोने की चिड़िया फिर से बनाएंगे। जय हिंद। टीआरएस हिंदी फिर से लौट के आएगा।